मदर्थे तत्त दैनका ये तप्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तां वेद उपाधि। इस श्लोक की हम लोगों ने सनातन गोस्वामी की टीका का पाठ किया। अब हम लोग आगे के श्लोक में हम लोग चलते हैं। इसमें हम लोगों ने मूल रूप में यही देखा कि जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अंतर्मुख एक बहिर्मुख। बहिर्मुख लोगों में तरह तरह के लोग व्यक्ति होते हैं, उनमें से लाखों कोटि में से एक अंतर्मुख व्यक्ति होता है। अंतर्मुख माने क्या? भगवान के तरफ में उसका मुख हो, अर्थात भगवान के प्रति श्रद्धालु। इनमें से साधन करने वाले भी कोटि कोटि में से एक होते हैं अंतर्मुख। इन साधन करने वालों में भी कृष्ण के प्रति अनन्य रूप से भजन करने वाला ये करोड़ों करोड़ों में से कोई एक। अनन्य में भी पांच प्रकार के भावों वाला एक। शांत रस का मिलना बड़ा दुर्लभ, और ऐसे करोड़ों शांतों में से कोई एक बिरला दास, और ऐसे करोड़ों में से एक कोई बिरले सख्य में, और सख्य में से कोई बिरला कृष्ण में ममत्व वाला भक्ति करने वाला हो, बिरले एक होगा। और उन लोगों से भी संपूर्ण ममता इत्यादि को ग्रहण करके भगवान में भक्ति रखने वाला साधक बिरले, इनको कहते हैं रागानुगा। और रागानुगा का मूल स्रोत कहाँ से आता है? जैसे गंगा जी का स्रोत मूल कहाँ से आया?
गंगोत्री।
गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसको कहते हैं? बर्फ ऊपर से पड़ता जाएगा, नीचे थसकता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे थसकता जाएगा, धसकेगा तो उसमें भार से गर्मी कुछ आती है, वो थोड़ा सा पिघलेगा, ऊपर में बढ़ता जाएगा, उसका भार नीचे सह नहीं सकेगा, घिसकेगा उसे बर्फ से ही गर्मी पैदा बर्फ, और उससे थोड़ा सा पिघलेगा, वही पिघल करके नाना प्रकार के स्रोतों से आ करके मानस सरोवर में जाता है।
बर्फ में भी गर्मी होती है,
भार जो होगा ना कितना भार सहेगा, कितना कोई भार सहेगा, बाद में भार लाते चले चले जाओ बर्फ को आखिर तक फिसलेगा, तो किसी को ग्लेशियर का। और उससे धीरे धीरे नीचे आने पर उससे पानी निकलता है, वही पानी मानस सरोवर में जमा होता है, और वही चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, कहीं ना कहीं से कोई छेद या कोई ना कोई सुराग पाता है, और वहाँ से भारतवर्ष के उत्तर से निकलने वाली जितनी भी गंगा यमुना गोमती, सतलज, ब्यास, ये सब पंच, ये सब पांच नदियाँ उधर की, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गंडकी।
सोन नदी उधर से कैसे
है?
सोन
तो यहाँ मध्य प्रदेश है, वो सब उन ग्लेशियरों से क्षेत्र से निकल करके हजारों धाराओं में, किंतु इनमें गंगा का महात्मा अधिक, तो ये गोमुखी से निकलती है। तो ये सब गंगा का मूल उत्स क्या है, मूल उत्स माने कहाँ से निकली, गंगोत्री जमुनोत्री के ग्लेशियरों से आकर के मानव सरोवर से ये सब खत्म नहीं होता। पानी इतना बहता है, खत्म क्यों नहीं होता, सालों बारहों महीने बर्फ जमता रहता है, वो कभी नहीं कमता, इसलिए पानी भी वो उसमें से जो निकलता है वो भी कभी समाप्त होता है। पानी कहाँ से आया इतना, वही गंगा का पानी समुद्र में जाकर के या गंगा से ऊपर आकाश में मेघ के रूप में चला जाकर के फिर उधर से भर जाता है, इस तरह से वो घूमता रहता है, इसलिए कभी पानी नहीं सूखता। उसी प्रकार से वो कह रहा था ये रागानुगा का मूल कहाँ है, रागात्मिका, रागात्मिका भक्त जो है, रागात्मिका भक्त भी बहुत से प्रकार के हैं, जिनमें दो प्रकार के प्रधान हैं, एक साधन द्वारा सिद्ध और एक नित्य ही परिकर। नित्य परिक्रमा भी दो हैं, कायबु वाला और एक जीव, ये जीव तत्व, और एक है कायबु, वो जीव तत्व नहीं। कायबु भी दो प्रकार का, बलदेव प्रभु के कायबु, राधा जी के कायबु, मधुर रसाश्रित भक्त लोग जितने हैं वो सब राधा जी के, ये सब कायबु।
नंद यशोदा आदि इन लोगों को किनके कायबु माना जाएगा,
साधारण रूप में कह दे है एक ही वस्तु, दो है नहीं, दो रूप में दिखता है। अद्वैत ज्ञान परतत्व जो है सच्चित आनंद के रूप में
ना,
वो तो कृष्ण चित है, वो हलादिनी आनंद है, उसमें बलदेव जी संबित हैं, ये तीनों मिलकर के एक तत्व है। यहाँ पर अलग अलग दिखता है किंतु मूल में एक ही है, इसलिए उसमें कोई अधिक प्रश्न की बात
नहीं,
इसलिए उसमें अधिक कुछ गंभीर विषय नहीं, वो एक ही के अंदर में ले लो। वो दोनों बलदेव जी से निकला, किंतु राधा जी से काय जो होगा वो मधुर रस के, जसोदा जी को भी उसमें ले सकता है, जसोदा जी को भी लिया जा सकता है। जितनी शक्ति तत्व हैं मूल उद्गम श्रीमती राधिका जी, होने से भी ये साधारण है, साधारण ये क्लॉज है, क्लॉज जानता है, किसी भी जो रूल होता है उसमें साधारण क्लॉज होता है, विशेष क्लॉज होता है, जो दूसरों को मारेगा उसकी फांसी होगी, हो जाएगा
इसके साथ,
ये सब क्लॉज है, अलग अलग सब विचार। प्रत्येक मारने वाले व्यक्ति को फांसी नहीं होगी, डाकुओं को मारने से उसको पुरस्कार होगा, वो भी तो मारना ही है, इसलिए वो सब एक नियम लागू क्लॉज नहीं सब पर। इसलिए यहाँ पर रागात्मिक जो भक्त हैं उनकी बातें कह रहे हैं, ब्रज में कृष्ण के परिकर जो हैं उनमें वो, उनका स्वभाव ही स्वरूप ही है राग, राग माने अनुराग, तक अनुराग माने और भी बेचौबार, तो वैसे लोगों को चेष्टा करके किसी से प्रीति नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप होता है। इस लोक में भी हम देखते हैं कहीं बिना प्रयास की प्रीति होती है और कहीं प्रयास करने पर भी प्रीति नहीं होती, फिर उलट जाती है। वहाँ की जो प्रीति है स्वाभाविक स्वाभाविक ऊपर से जो चलती रहती है नित्य अविच्छिन्न तैल धारावत अविच्छिन्न गति से वो चलती है। इसलिए मनमनस का उनका मन ही है कैसा कृष्ण के प्रति बिना बाधा के निरंतर लगा रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, रुकने वाली है ही नहीं। मत प्राण, मैं उनका प्राण हूँ अथवा वो मेरे प्राण है। मत प्राण माने हमारी वो प्राण है, अथवा मत माने मैं ही उनका प्राण है, ऐसा। जैसे प्राण शरीर में निकल जाने से शरीर नहीं रहेगा, वैसे ही मैं यदि उनके जीवन में से निकल जाऊं तो वो मर जाएंगे, अथवा वो हमारे जीवन से निकल जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। अत्यक्त देह का ये प्रकट लीला का ये सब वर्णन हो रहा है, वहां का नहीं, देह छोड़ने का कोई भी प्रसंग नहीं,
छोड़ने
उनका देह और दैहिक सब तो कृष्ण संबंधी है, किंतु इस जगत के लिए हम लोगों को समझाने के लिए ये कहा जा रहा है। उद्धव जी को ये कह रहे हैं तप्त देह का, देह और देह संबंधी जितने भी क्रियाएं हैं,
लोक धर्म पे तो धर्म
सब कुछ
लज्जा गुरु,
अभी इसमें और बतलाया गया देह दैहिक मैंने खाना पीना आभूषण मंडल और दूसरों के साथ प्रेम इत्यादि देह और दैहिक, और त्यक्त लोक धर्मांश लोक के जितने भी धर्म हैं हमारे लिए वो भी छोड़ दिया है, और किस लिए मद अर्थ मेरे लिए सब छोड़ दिया है। तान विभर्म्य हम, मैं उनका सब प्रकार से पालन पोषण करता हूँ, इनका जो ऐसा करते हैं। अब ये तो उनके लिए हुआ जो कृष्ण के परिकर हैं, किंतु जो भी साधक हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी समझो। यदि किसी ने अपना लोक धर्म देह दैहिक सब कुछ कृष्ण के लिए छोड़ दिया तो कृष्ण कहते हैं उनके लिए मैं कभी छोड़ सकता हूँ, कदापि उनका नहीं छोड़ सकता। यदि आंशिक रूप में भी किसी ने भगवान के प्रति ऐसा किया तो भगवान उनको नहीं छोड़ते हैं, उनका सब कुछ जितना संकल्प इत्यादि है स्वयं वहन करके घर में ले जा सकते योग क्षेम किन के लिए कहा, सततम कृतयंतो मांग जना जे पर्युपासते परी संपूर्ण रूपेण सर्वभावेन उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं उनके लिए कहा, उनका सब योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। और क्या एक बात विशेष बतलाया, आप लोगों को याद होगी कि नहीं, हम लोगों के लिए जिन लोगों ने लोक धर्म वेद धर्म देह दैहिक सब कुछ छोड़ दिया और उनको अपना मानने जो लोग मानते हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरी मैया है, मेरी बहन है, मेरी लड़की है, उनका क्या करता हूँ, कैसे पालन पोषण करता हूँ, जैसे उनके पति हैं गोपियों के, गोपियाँ घर में नहीं लौटी, किंतु उनमें ये मेरी प्यारी पत्नी है, इसलिए कृष्ण ने योग माया के द्वारा उनकी मूर्ति के समान उनको बना करके उनके घर में रसोई कराना, उनके पैर दबाना, खिलाना पिलाना, पुत्री है मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी लड़की है, तो पिता का जो है लड़की का संबंध उनके प्रति करा रहे हैं।
भक्त इच्छा पुराना नहीं,
अविभक्त नहीं है,
ये तो बड़ी करो।
जैसे मान ले कि अभिमन्यु है, अभिमन्यु भगवान का भक्त है, इस लोक में भी उस लोक में भी नहीं है, क्या करते हैं। अरे ये जो बड़ी चीज है जो राधा जी का पति अपने को समझता है तो भगवान उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारी सबसे अधिक प्यारी प्रियतमा, और उनको ये अपनी समझता है पत्नी, तो वो क्या करते हैं जोग माया से उनका पत्नी का रूप जैसा ठीक उनका अविचल स्वर रूप गुण सब उसमें लगा करके और उसके घर में रख देते हैं, और वो घर में रसोई बनाना और काम करना जो है वो सब उसका उनको मालूम है ऐसा। इस यही कारण है कि जो लोग भक्त होता है इस जगत में भी कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, उत्तम भक्तों के 21 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं, इसीलिए क्यों उन भक्तों के प्रति मम की बुद्धि है, यह मेरा बेटा चला गया, बेटा चला गया तो भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे, मैया कह जी हमारा पुत्र चला गया भजन करने, तो उसके मैया को भगवान क्या करेंगे, बिना साधन भजन के ही उनको भजन करने का सुयोग दे देंगे और अंत में अपने पास में ले लेंगे, जैसे हिरण्यकश्यपु के लिए उन्होंने कहा प्रहलाद महाराज, इसलिए तुम लोग भी मत सोचना जब मैं चला आया तो मेरी मैया मेरे पिताजी मेरे भैया मेरी पत्नी बड़ी दुखी उनको कौन देखने वाला होगा, नहीं ये भाव रखो, जरूर पालन पोषण भगवान करते हैं उनसे, भगवान से अधिक बढ़ करके पालन पोषण करते हैं, ये ऐसा पल रखना चाहिए, और नहीं तो 10 बार खत लिखे देखा जाए, 1 बार घूम आए वर्ष में 2 बार घूम आए और यहाँ से जो प्रणामी टरामी मिले वो घर में भेज दें, फिर क्या होगा, तो जैसे ये बेकार का ढोंगी है इसको हटाओ, बस उसको वहाँ से गिरा देंगे और गिरा करके भेज देंगे फिर संसार, इसलिए भगवान पर भरोसा रखना सीखो तब तक ये हो जाएगा ठीक, और नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उनका पालन पोषण किन का, जो रागात्मिक भक्त हैं उनकी तो बात ही क्या, जो नहीं है उन लोगों से जिनका संबंध है उनका भी 21 पीढ़ी हो गया उत्तमों का और 14 पीढ़ी हो गया मध्यमों का, और कनिष्ठ जो हैं, कनिष्ठ माने क्या, तत्व ज्ञान भी पूर्ण नहीं हुआ है, संबंध ज्ञान उदित नहीं हुआ है, किंतु हैं अपने विचारों के पक्के, अब भगवान के भजन से चूक नहीं होगा चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऐसे भक्तों के लिए भी भगवान 7 पीढ़ी के लोगों का उद्धार कर देते, उद्धार माने का
तो भजन के रास्ता सुगम कर देते हैं,
साधु संग दे करके उनको धीरे 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 श्रद्धा निष्ठा रुचि के भजन के प्रक्रिया मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो चाहे किसी न किसी प्रकार से जरूर लगा देंगे हम लोगों ने, और भी इसमें विशेषताएं थी, हम लोगों ने इसका पाठ किया। अब चलो आगे के श्लोक में प्रेष्ठे दूरस्ते गोकुल स्त्रिय स्मरंत्यंग विमुयंती गृहखंड विफला, उद्धव ब्रज में जाओ मेरे पिताजी को समझाना सांत्वना देना, किंतु यह उपलक्षण मात्र है, उनको भी समझाना किंतु असल में भेज रहे हैं जिन्होंने लोक धर्म वेद धर्म सब छोड़ दिया, इन लोगों ने भी नहीं छोड़ा है, किन लोगों ने, दास्य सख्य वात्सल्य मैया ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा, नंद बाबा ने मैया को नहीं छोड़ा है, और जितनी गोपियों के माता पिता इत्यादि हैं उन लोगों ने भी किसी को नहीं छोड़ा, छोड़ा किसने,
गोपियों को,
एकमात्र गोपियों ने अपना देह दैहिक लोक सब,
सखाओं ने
उद्धव जी जब गए
सखाओं ने छोड़ा ही नहीं,
वो बड़े आनंद से, यदि कोई आनंद से है तो सखा लो, क्यों सब समय समझते हैं जी कृष्ण हम लोग के साथ, वही एक ही का ऐसा, बल्कि कहीं टीका ने ऐसा लिखा है जैसा मैं कह रहा हूँ, सखा लोग कृष्ण के साथ में मथुरा आए, तो हो सकता है जब एक बार मथुरा आए तो उनको निषेध कौन करेगा, वो आ जाते हैं बीच में देख जाते हैं और देख करके चले जाते हैं, निराश होकर के लौट जाते हैं। कृष्ण का वैसा प्रेम नहीं पाते ना, अधिक दिन नहीं रहते, हो सकता है कभी आ जाते हैं, इसलिए उनको इतना विरह नहीं है जितना कि इन लोगों को। प्रिय उद्धव, मैं मई ता प्रियसान, वो हमारी प्रियसान प्रियतमा है, और मैं उनका प्रेष्ठ प्रियतम, उन प्रेष्ठ के प्रियतम के प्रति दूरस्थे गोकुल प्रिय, मैं अब गोकुल से मथुरा आ गया, इसलिए गोकुलांगनागण गोकुल के जो स्त्रियां हैं गोकुल स्त्री, और गोकुल कहां पर है, जमुना के किनारे है ना, महावन के में स्थित जो गोकुल है, गोकुल का अर्थ क्या होगा, जहाँ गायें रहती हैं, ग्वालिने रहती हैं, ग्वाले रहते हैं, वहीं पर जहाँ भी रहते हैं, नंदगांव भी गोकुल है, राधा कुंड, श्याम कुंड, वृंदावन, ये सभी गोकुल हैं, किंतु महावन वाला गोकुल नहीं, वो भी एक गोकुल है, महावन गोकुल कहलाता है,
तो बाल लीला का,
किंतु गोकुल सभी, तो गोकुल स्त्रीय, गोकुल की जो स्त्रियां हैं, नंद बाबा के घर की जो स्त्रियां हैं, मुझे स्मरण करके उत्कंठा से स्मरती ही अंग, अंग माने हे प्रिय, अंग उद्धव के लिए स्मरंती विमुयंती, और स्मरण करते हैं विमोहित हो जाते, मोहित होना और विमोहित होना, मोहित होना माने क्या, मरने के समान हो जाना, वहां पर मरण नहीं है क्योंकि आत्म तत्व है उसमें मरण नहीं, तो दशम दशा भी उपस्थित विमोहयंती, स्मरण करते ही विमोहित हो जाती है, मरने जैसी दशा उनकी हो जाती है, विरहत कंठ विह बला, ऐसी उत्कंठित विरह में हो जाती हैं, अत्यंत विह्वल हो जाती है, विह्वल माने क्या, व्याकुल जिसको हिंदी में कर सकते, व्याकुल व्याकुल विशेष रूप से आकुल, आकुल माने जिसका किनारा नहीं है, इधर भी किनारा नहीं उधर भी किनारा नहीं, लंबा चल रहा, उस विरह का कोई किनारा नहीं है, ऐसा आकुलता जहां आ जाए उसको कहते हैं व्याकुल, तब वो उत्कंठा क्यों कहा गया, उत्कंठा का तात्पर्य क्या, अभी तो हम लोग अपने आप ये व्याख्या कर रहे हैं, हम जब सनातन गोस्वामी का उत्कंठा है, उत्कंठा माने उत कंठा कंठ फिर उसमें लगाए, कंठ तक आ गया है क्या, अब आ रहे हैं, अब आएंगे, अब आ गए, कब आएंगे, इसको कहते हैं अब वो कहते हैं जिसे विमो मर ही तो जाती किंतु मर क्यों नहीं रही, विरह उत्कंठा के कारण उन्होंने कहा है कि मैं परसों कल या परसों आ जाऊंगा, इसलिए प्राणों को बड़ी मुश्किल से धारण किए हुए हैं, धारयंती प्राणा अति कृष्णेन, अत्यंत कृष्णता से कष्ट से प्राणों को धारण करने का कारण क्या है, मैं आऊंगा, कब आऊंगा ये ठीक नहीं, इसलिए प्राणों को धारण की हुई, किंतु वो कह रहे हैं जैसे मैं ही उनका प्राण हूं ना, इसलिए उनके प्राणों को निकाल करके अपने यहाँ मैं लेकर के मथुरा में रख रखा है, यदि यह प्राण उनके पास में होता तो क्या होता, उनका प्राण ही जल जाता, खत्म हो जाता। फिर कहते हैं मैता प्रियसं, कल एक चीज हमने शायद बतलाया था ब्रज में जो प्रेम है तीन प्रकार का, क्या कौन कौन
गावियों का है, गावियों सुनना उत्कंठा में
ही ना विवेक सुनना, एक
गावियों का
अरे ऊपर से चलो नीचे से क्यों चलना है,
और गोपियों का उत्कंठा में
गोपियों का प्रेम उत्कंठा
और सखा का समसम सुनना
और सप्रम सुन
और गाय का विवेक विवेकहीन,
गाय का विवेकहीन मैंने क्या
हल हम तो क्या अच्छा समझने समझ
स्नेह के कारण अशु कम पाती, किंतु उसमें रस चमत्कार करने के
विवेक शून्य मैंने विचार करके भावयुक्त जो उनमें होगा ये नहीं, सखा में होने पर भी वो संभ्रम रहित है, संभ्रम रहित मैंने क्या
संभ्रम मैंने भय गौरव
भगवत भाव का गौरव इत्यादि नहीं, और गोपियों का है उत्कंठा, दूसरों का उत्कंठा, उत्कंठा मैंने आ जाएंगे अब आएंगे अब आएंगे अब आ गए कब आएंगे ये उत्कंठा। कृष्ण कहते हैं ओ सखे बड़े आश्चर्य की बात, ओ की आश्चर्य क्या आश्चर्य की बात, देखो तो जगत में ऐसा कहीं नहीं देखा सुना है, कहीं है ही नहीं ऐसा आश्चर्य। किसको कहते हैं जो कहीं भी सचराचर नहीं देखा जाता है अलौकिक बात, उसको कहते हैं आश्चर्य। इस प्रकार से कहीं भी विश्व में या तीन लोकों में विरह जनित ऐसा मनस्ताप, विरह की व्यथा, विरह की व्याकुलता और कहीं नहीं देखी। भजन किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं, साधन और भजन दोनों एक चीज नहीं है, हम लोग कभी कभी लगा लेते हैं साधन भजन, उस समय का ये तात्पर्य नहीं है, आकुलता व्याकुलता नहीं है, उसको लाने के लिए साधन है। भगवान के लिए हम उनसे कोटि कोटि जन्मों से बिछुड़े हुए हैं, जो संपूर्ण रूप से भूल गए हैं, किंतु साधु संगति में शास्त्रों के विचारों के द्वारा जो ये समझ लिए हैं सचमुच में हम लोग ईश्वर अंश जीव अविनाश चेतन अमल सहल सुखराश, हम जीव भगवान के अंश, भगवान से ही हमारा संबंध है, ममैवांशो जीवलोके जीवलोकः। इसलिए कृष्ण के जो गुण हैं हमारे अंदर में भी हैं, उनको बिछोड़ने से आज हम खोज रहे हैं वो चीज, क्या सुख, सुख खोज रहे हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सुख नहीं खोजता, जहाँ जन्म हुआ ना, जन्म होते ही एक हिरण का बच्चा गाय का बच्चा क्या करता है, अभी जन्म लिया
पाकिस्तान के पास है,
अभी उठ करके अभी खड़ा ऐसे गिरता है पड़ता है झट खड़ा हो जाता है, और वो कहाँ जाता है
पाकिस्तान के पास,
मैया कहती है जा जा हमारे स्तन पी लो, न कोई आदमी पकड़ करके उसके मुंह को वहाँ ले ले जाता है, क्यों क्यों कोटि कोटि जन्मों की वृत्ति और संस्कार, इसलिए वो मैया का मुख नहीं देखता, मैया का कान नहीं देखता, उसके और अंगों को नहीं देखता,
नहीं देखता कुछ नहीं देखता,
वो क्या करता है वो मैया के स्तन को देखता है। एक बच्चा उत्पन्न हुआ, हमने तो देखा नहीं किंतु अनुमान करता हूँ ऐसा ही होता होगा, किसी को लड़का हुआ किसी मैया बेटा हुआ, बेटा हुआ जब वो गोद में बैठने लायक हुआ या साथ ही साथ में जब ही हुआ तो गोद में बैठा दो तो वो मुख बढ़ाएगा बात ठीक है कि गलत है? मैया नहीं कहेगी जैसे आ जाओ तिल्लू, वो मुख बढ़ाएगा, मुख खोले और ठीक स्तन के बाद निकले, कोई कहेगा नहीं, कोई नहीं कहेगा। ये प्रवृत्तियां हैं। इसी प्रकार से मानव हृदय में जितनी भी प्रवृत्तियां हैं पूर्व जन्म के संस्कार से ही, हम लोग भगवान को संपूर्ण रूप से भूल गए हैं, किंतु प्रवृत्ति का जो विकृत रूप है वो नहीं भूल जाएगा, वो रहेगा। पानी बर्फ हो गया बात ठीक है, किंतु पानी बर्फ में तरल होने की गुंजाइश सब समय रहेगी, सब समय उसमें रहेगा। बर्फ जब भी रहेगा ना उसे बूंद बूंद क्या होगा, टपकेगा ना रस, पानी पानी टपकेगा।
इस जगत में भी पंचरस का छाया देखा जाता है,
इसलिए जीव में जो स्वरूप की जो वृत्तियां हैं इसमें विकृत अव्यकृत जिस किसी भी रूप में हो वो जरूर रहेंगे। एक आग का खंड है, उसको लोहे से ढक दो, इतना मोटा लोहा से, क्या होगा?
लोहा गर्म हो जाएगा,
जलाएगा तो नहीं
गर्म,
किंतु गर्म होगा जरूर। उसी तरह से जीव की जो वृत्तियां हैं, क्योंकि भगवान का अंश है इसलिए वो सुख को खोजता है जहाँ सुख होता है। एक चींटी दिन भर रात भर चलती है गुड़ की या कोई चीज की खोज, इससे उसको सुख मिलता है। इसलिए जीव जन्म के साथ ही साथ जन्म से लेकर के मरण तक सब समय सुख की खोज, किंतु जन्म से लेकर के मरण तक ढूंढते ढूंढते हार जाता है, कहीं भी
सुख नहीं,
वो सुख जो सुख मिलता है वो कहता है बस बस यही तो मैं चाहता था, नौकरी लग जाए, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी लग गई, अब तुम्हारी अरमान तो पूरा हो गई, नौकरी के बाद में पैसा न लगा तो अरमान बढ़ा ना कमा। एक सुंदर सी घर में बहू आई, बहू आ गई है, 10 वर्ष लड़का नहीं हुआ, लड़की नहीं, और अब क्या चिंता हुई, घर बनाया लाखों करोड़ों रुपयों का और घर में एक संतान नहीं है, घर सुना है। लड़का हो गया, 5 लड़के 10 लड़के हो गए और उनको पालन पोषण करने की शक्ति नहीं, दुखी होगा कि नहीं? इस तरह से जब मरने बैठेगा उस समय भी इतने घर घर हो जाएंगे, एकदम कप बात पित्त एकदम भर जाएगा, सांस भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा दम खींचेगा, उस समय कोई आकर के बचाए। अपूर्व जन्म के इस जन्म के जितने जो कार्य किए हैं उसका संस्मरण हृदय में होने लगता है, उस समय कोई रक्षा नहीं करता, असहाय होकर के दम थोड़ा छोड़ देता है। अब इस जन्म के पूर्व जन्म के संस्कार इसके अंदर में जो लग जाते हैं फिर उस संसार में, तो ऐसे साधकों में से
व्याकुलता लाने का प्रयास ही साधन
है। तो वैसी व्याकुलता हमारे अंदर में नहीं है, कहाँ गए? ठीक, इधर में बैठ। कहते हैं कि ये हम भूल गए, सुख कहाँ है? न अल्पे सुखम, ये जन संसार के लिए हम जो कर रहे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे और ये करेंगे व्यवसाय वाणिज्य करके धन जुटा लेंगे, धन के बाद में घर बनाएंगे, परिवार होगा, इसका पोषण पाषण, इसके द्वारा जो सुख मिल जाएगा ये बढ़ता 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 चला जाता, अंत तक सुख नहीं, ये सुख कैसे होगा बिना भगवत भक्तों के संग में? संग से भगवान के चरणों में रुचि नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। हमतो जदा सत्समागम, जब तक कि अच्युत के भक्तों का संग नहीं होगा, समागम नहीं होगा और हमारी बुद्धि पलटेगी नहीं, सुख इत्यादि की लालसाएं जो ठीक रूप से चलने वाली हैं वो यदि नहीं ठीक से उधर में लगी भगवान के लिए कुछ नहीं किया तो नहीं होगा, और यदि सत्संग मिल गया तो समझो हमारा संसार का बेड़ा पार हो गया। या बेड़ा पार करने वाला है तो समझो कि साधु संग हो, दोनों एक ही चीज। इसलिए कहते हैं कि भजन करने में जो पहले है साधन, साधन होना चाहिए उस प्रकार की व्याकुलता के लिए, भगवान के लिए। जैसे अभी व्याकुलता किस लिए है, धन पुत्र परिवन परिवार इन लोगों के सुख के लिए अभी हमारी उत्कंठा है, कैसे ये लोग सुख, मैं कैसे सुखी। उसी प्रकार से भगवान के मिलने में हो, भगवान के लिए विरह की अनुभूति हो। कैसे होगी, जिनमें भगवान का विरह है उनका यदि अनुगमन करें हम तो हो, उनकी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण। कीर्तन भी ऐसा होना चाहिए, कैसा, हमको उसी प्रकार की उद्दीपना कराने वाला हो। कृष्ण के विरह में उनके भक्तों की क्या दशा होती है, ऐसा होना चाहिए। जैसे रघुनाथ दास जी का जीवन चरित्र हमने कल सुनाया, उसके पहले गंगा माता जी का सुनाया, उनकी कैसी व्याकुलता थी भगवान के लिए, वैसे व्याकुलता होनी चाहिए हम लोगों के अंदर में। जैसे संसार के लिए हम व्याकुल हैं, कैसे व्याकुल हैं, किसी को देखो संसार में लोगों को कैसे व्याकुल, तो इसलिए कहते हैं ऐसा जो विरह ताप है कहीं नहीं देखा गया। उद्धव से कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात, लोगों को कुछ कुछ विरह होता है किंतु गोपियों को जिस प्रकार से हमारे लिए विरह हुआ ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। अर्थात विरह ताप वो जैसी भोग कर रही हैं किसी भी मनुष्य में, जीव में, साधक में भी नहीं देखा जाता। एक देखा गया कहीं महाप्रभु जी के सब वैसा विरह, और कहीं नहीं देखा गया, कहीं सुना भी नहीं जाता। किस कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, मतलब क्या, जा करके देखना जो कैसा उनका विरह है। गए उद्धव तो देखा भी, ऐसा अनुभव किया जो उनके जैसा विरह ताप और किसी में नहीं। जेहेतु यही ताप अनुखन वर्णित है या तह दिखे मोह मृत दशा प्राप्त, या उनका ताप निरंतर बढ़ता रहता है, विरह का ताप मिलने की उत्कंठा नए नए रूप में बढ़ती जाती है, उपशम नहीं होता, कभी वो कमता नहीं है, और बढ़ते 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 वो अश्वशात्विक विकार क्या क्या, अश्रु पुलक रोमांच स्वरभंग वैवर्ण बेपतु और मोह मृत्यु, एकदम मृत्यु तक उपस्थित हो जाती है। जिस समय में उद्धव जी गए वहाँ वृंदावन में, उस समय गोपियों को तो किसी किसी को किस रूप में देखा वो समझ नहीं सके, और राधा जी के जब दूर से देखा तो देखा जब मृत पैर पड़ी हुई, श्वास भी नहीं चल रहा है कि चल रहा है कुछ। उसी को मई इन दोनों श्लोकों में वर्णन करते हैं, हम आगे कल इसका वर्णन करेंगे। थोड़ा सा अभी कीर्तन हम लोग सुने, मई ता प्रियसं पृष्ठे दुरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरंत्यंग देवं यन्ति बृहत्कंठ देवल। उद्धव जी को कृष्ण मथुरा में भेज वृंदावन में भेज रहे हैं गोकुल के पास, उस समय का ये श्लोक दे रहे हैं। गोपियों के विरह की बात कर रहे हैं। हमारी जो प्रियसियां हैं, मैं कहां यहां पर पड़ा हुआ, और ये गोप गोपियाँ कहाँ गोकुल में पड़े हुए हैं। स्मरण हमारा करती हैं और करते हैं वो लोग, और विहमो यंती विरक्त की उत्कंठा से बच रही हैं केवल इसलिए कि कल मिलेंगे वो आएंगे। इसलिए विरक्त की उत्कंठा में वो जीवन धारण किए। साधक भक्त भी इतना तो नहीं किंतु उसका आभास होना चाहिए, कृष्ण कब मिलेंगे, विरक्त की उत्कंठा जगी रहेगी। महाप्रभु में, उनके भक्तों में, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी में, जिनका आपकी चरित्र कल परसों बताया, और सब भक्तों में यही देखा जाता है। इसको कहते हैं साधन भजन। हम लोग पहले उपलब्धि करेंगे कि कृष्ण के विरह में उन गोपियों की, गोपों की क्या दशा है। अब ये ले आएंगे उसके लाखों भागों में से एक भाग हमारे अंदर में है कि नहीं, यदि है नहीं है तो उसके लिए साधन करेंगे, और यदि साधन हो है तो उनके प्रति ऐसी विरह उत्कंठा रहे। विरह उत्कंठा यही साधन भजन का लक्षण है। इसकी अनुभूति हो, जैसे हमारा लड़का है, कोई भी यहाँ का एक बच्चा है, कोई चिंता नहीं, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, घर में कोई बच्चा है, अपना खा रहा है, मैया के पास, पिता के पास में आ रहा था, स्कूल जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और दो दिन नहीं दिखाई पड़े किसी को घर में, तो क्या होगा, क्या होगा उस समय। यहीं का कोई बच्चा है, मान लिया कि कहीं एक दिन नहीं देखा, शाम को, रात में नहीं देखा, मैंने पूछा भाई उसको तो देखा नहीं, कहाँ गया, अब उसके लिए चिंता होगी कि नहीं। पिता माता को अपने पुत्र के लिए चिंता होगी कि नहीं, भाई आज नहीं आया, फिर देखा कल भी नहीं आया, फिर परसों नहीं देखा, क्या करेगा, पुलिस में भी रिपोर्ट करेगा, भाई हमारा बच्चा गुम हो गया, कहाँ चला गया, अपहरण हो गया या क्या हो गया, कहीं मर गया। अभी सुना जैसे जमुना में स्नान करने के लिए कोई गया प्रयाग घाट पर, और वो एक डूब गया, उसको दूसरा बचाने के लिए, दूसरा भी डूब गया, बड़ी मुश्किल से वो तो बच गया, किंतु पहला वाला मर गया, कहीं वही तो नहीं है, कौन है? खाना पीना घर में होगा, रसोई बनेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक ऐसे ही समझो, ये तो एक दिन, और कृष्ण से हमको बिछड़े हुए कितना दिन हो गया, कितना दिन हो गया बिछड़े हुए, अनादिकाल से बिछड़े हुए, और हम लोगों को तनिक भी कोई चिंता नहीं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खूब सो रहे हैं, कितना सोते हैं घर में, मैं सोता था 6 घंटे, यहाँ पर 9 घंटे 8 घंटे ही सोता। घर में क्या करते थे, फल चलाते थे, गृहस्थी करते थे, नौकरी करते थे, 12 घंटा नौकरी में पीस देते थे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, भजन कर रहे हैं, घर वाले सोचे हैं जो भजन कर रहे हैं, भजन मैंने क्या, यही चीज। कैसे उनका सौभाग्य है जो दिन रात कृष्ण की चिंता में लीन है, भगवत में भी ऐसा कहा गया, जैसे चिड़िया घर से उड़ जाती है और रैन बसेरे होकर के, रैन बसेरा मैंने क्या, जहाँ तहाँ काट दिया रहा, वैसे ये लोग भी घर से निकल गए, घर वाले रो रहे हैं, ये भी रो रहे थे, ये किस लिए रो रहे, कृष्ण नहीं मिले, हाय हाय कृष्ण नहीं मिले, और घर वाले किस लिए रोते हैं, हमारा बेटा चला, हमारा बेटा को कोई एक में कुछ दे नहीं सका, कुछ लिया नहीं, कहने रात में कहाँ रहता है, कहीं जमुआ के किनारे, कभी गिरिराज जी के तराई में, कहीं कुछ कहीं कुछ, किसी ने दे दिया तो ले लिया, नहीं दिया तो। इस प्रकार किस लिए, इसलिए ऐसा कर रहा है। रूप सनातन रोते हैं क्यों? विरह में ना। यदि साधकों को यहाँ आकर के इसकी अनुभूति नहीं हुई तो बेकार हमारा साधन। इसलिए ऐसे भावना होने की जरूरत है। इसीलिए ये सब चीज़ों को यहाँ पर देते हैं। गोपियों को, ग्वालों को, सखाओं को कृष्ण के लिए कैसा विरह था उसकी झलक हृदय में आएगी तो हम लोगों को भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए इसका आभास कब मिलेगा? भाव अवस्था। तब तक हम सुन रहे हैं ऐसे उनको हुआ, ऐसे हुआ। मीराबाई घर से छोड़ करके चल पड़ी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, साथ उन संग बैठ बैठी लोक लाज खोई, घर छोड़ करके चली आई। राज रानी राजकुमारी पैदल वृंदावन में माँ बुद्धुकरी मांग करके जीवन निर्वाह करके फिर कहाँ पैदल चली गई द्वारका। ऐसे हम लोगों को खूब सुख से आराम से सोते हुए भजन कर रहे हैं, न विरह के दुख का, इसकी भूमिका भजन का ये तात्पर्य है। उनके लिए विरह की अनुभूति हो जो कृष्ण से हम नहीं मिल पा रहे, छोड़े हुए अनंत काल हो गए, अनादि काल से। इसलिए ये सब दे रहे हैं कि हमारे हृदय में भी ऐसी भावना जगे। इसका नाम है किसके लिए? कृष्ण जो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं उनके लिए ऐसा भाव आए, उसके लिए करें। ओ सके कृष्ण करें, उनकी महिमा स्वयं भगवान करें।